ओम शांति। आज के चिंतन की ओर आगे बढ़ने से पहले हम कुछ देर ध्यान में बैठते हैं, सहज भाव के साथ, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। चाहे तो आप आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आंखें खुली करके भी आप इन विचारों के चिंतन में बह सकते हैं, जैसा आपको सहज लगे। मैं जो थॉट आपको देती जाऊं, उस अनुसार आप गहराई का अनुभव करेंगे। मन शांत है, सभी कर्मेंद्रियां शांत है। चारों ओर शांति के प्रकंपन है। और इस शांत वातावरण में अनुभव कीजिए कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये शरीर मेरा एक वस्त्र की तरह है। आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, और मुख द्वारा बोलने वाली, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं शांतिपुंज, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मस्तक के मध्य एक दिव्य प्रकाश अनुभव कीजिए। ये प्रकाश धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा है। मैं प्रकाश पुंज, प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के मध्य। मैं आत्मा चमक रही हूँ। जैसे मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। और उस ज्योति से शांति की किरणें उतर उतर कर मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आज प्रथम दिन, आज के सत्र की शुरुआत उस प्यारे पिता परमात्मा जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, उनकी याद से हो रही है। और यही भाव दिल की गहराइयों में जागृत हो रहा है कि ईश्वर अपने साथ है, तो डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। इसी भाव में खोते हैं। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते। जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते है सामने वो दिन रात है प्यार की बरसात है सदा सफलता साथ हमारे हाथ में उसके हाथ है ईश्वर अपने साथ है डरने की क्या बात है समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है तेरा था जो तुझे मिला है कोई तो छीन न पाया है जीवन प्रभु सौगात है प्यार की सौगात है सदा सफलता साथ हमारे हाथ में उसके हाथ है ईश्वर अपने साथ है डरने की क्या बात है परमात्मा याद में खोकर हम आज के चिंतन की ओर आगे बढ़ते हैं शांति 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 ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। देखिए आज आपका पहला दिन है ना? हालांकि रिसेप्शन सेशन शाम का सत्र है लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं कि जो पहले आए हैं है ना, उनको भी मॉर्निंग क्लास का कुछ फायदा मिलना चाहिए। तो वैसे तो मॉर्निंग के जो सत्र होंगे वो राजयोग शिविर के ही होंगे और हम चाहेंगे कि इसको आप मिस नहीं करिएगा क्योंकि मीडिया से रिलेटेड बातें तो होंगी ही होंगी और मीडिया में किस प्रकार अध्यात्म को हमें शामिल करना है सकारात्मक चिंतन को मेडिटेशन को इस बात का भी ज्ञान सभी सेशन में आपको प्राप्त होगा ही होगा। लेकिन जो आज का सत्र है उसमें है कि हमारी दिनचर्या में जो हम डेली एक लाइफ जीते हैं उसमें आध्यात्म की मेडिटेशन की क्या भूमिका है। कई बार हम समझते हैं कि हम सब इतने व्यस्त हैं तो हम कहाँ समय निकालें मेडिटेशन के लिए या पॉजिटिव थिंकिंग की क्लासेस के लिए। अगर हम छोटे बच्चे से भी पूछें जो नर्सरी के जीवन के जी टू में पढ़ रहा है या फिर आगे की क्लासेस में है उससे भी पूछें तो वो कहेगा मैं स्कूल जाता हूँ ट्यूशन जाता हूँ और अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता हूँ मुझे तो समय ही नहीं है, है ना? तो समय तो किसी के पास नहीं है, समय निकालना पड़ता है। और जब हम 24 घंटे में वो एक घंटे का समय निकालते हैं तो हम फील करते हैं कि हमारा 23 घंटा भी शक्तिशाली हो रहा है। तो फायदा है कि नुकसान में है? फायदे में, 23 घंटे आप सब कर्म कीजिए, घर भी संभालिए, मीडिया से रिलेटेड आपके कार्य हैं उसको भी आप संभालिए, लेकिन आप अपने जीवन का एक घंटा किसी को भी नहीं दीजिए, न परिवार को न कार्य में। वो आपका व्यक्तिगत होना चाहिए जिसमें आप स्वयं को शक्तिशाली स्थिति में स्थित कर सकें। ठीक, तो ये साइंस ने भी प्रमाणित कर दिया कि 20 मिनट का पावरफुल मेडिटेशन हमारी 8 घंटे की थकान को दूर कर देता है। केवल 20 मिनट का पावरफुल मेडिटेशन हमारी 8 घंटे की थकान को दूर कर देता है। और ये बात भी कही कि 5 मिनट का बॉइलिंग टेंपर पर गुस्सा हमारी 2 घंटे कार्य करने की शक्ति को नष्ट कर देता है। तो हम सभी हम हमेशा हम शब्द का प्रयोग करते हैं, आप ऐसे हम ये नहीं कहते, हम सभी कभी न कभी क्रोध के हाई टेंपर में आते हैं, कोई तो बहुत ज्यादा, कोई कम रियलाइज कर लेता है और अपने आप को चेंज कर लेता है, कई है हाथ उठा देते हैं, कई है किसी का मर्डर कर देते हैं, है ना, ये सब क्रोध के ही तो स्तर हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी जीवन में देखने में आता है कि परिवार में चाहे पति पत्नी हो, बच्चे हो, तो हम सोचते हैं कि हम बच्चों के लिए तो हर कंफर्ट्स ला रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और उनके लिए वो व्यवस्था की जा रही है, फिर भी बच्चे खुश क्यों नहीं है, पत्नी खुश क्यों नहीं है, कंफर्ट्स लाए हैं हमने लेकिन हमने किसी को भी माइंड का कंफर्ट देने का प्रयास नहीं किया। और कहने में क्या आता है कि हम सब कुछ तो कर रहे हैं, हम सब कुछ तो कर रहे हैं, बताओ बच्चों तुम्हारे पास क्या चीज की कमी है, तुमने मोबाइल देने बोला मोबाइल ले आया, तुमने कहा मेरे लिए अलग रूम है अलग रूम ले दिया, बना दिया, गाड़ी बोली गाड़ी ले आए, फिर भी तुम खुश नहीं रहते। लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा कि मुझे भी क्या चाहिए और बच्चे को भी क्या चाहिए, जिसमें मेरा माइंड जो है वो कंफर्ट स्टेज में रहे। क्योंकि अगर मैं खुद चार्ज रहूंगी तो मैं दूसरे को चार्ज कर पाऊंगी, लेकिन अगर मैं खुद डिस्चार्ज हूं तो मैं दूसरे को कुछ भी नहीं दे सकती हूं, केवल सुख सुविधाएं दे सकती हूं अगर हमारे पास धन की शक्ति है तो, लेकिन मैं उनको संतुष्टता तो प्रदान नहीं कर सकती ना, जिसको कहते हैं मन की संतुष्टता। तो उसके लिए जरूरी है पॉजिटिव थिंकिंग की क्लासेस और मेडिटेशन। और पॉजिटिव थिंकिंग की क्लासेस भी ये कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि अभी मैं ये क्लास परमात्मा की याद में ले रही हूँ और आप बिल्कुल चार्ज हो गए और आपको अब लाइफ में कभी गुस्सा आएगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको अच्छा लगेगा, आप सोचेंगे हाँ नहीं करना चाहिए गुस्सा, कर तो रही हूँ, अभी मैं पक्का दृढ़ निश्चय करती हूँ कि मैं क्रोध नहीं करूंगी, लेकिन फिर जब हम कर्म के क्षेत्र में आते हैं वर्कलोड बढ़ता है, और जैसे ही वर्कलोड बढ़ता है तो प्रेशर जो बढ़ता है ना, और हमने उस प्रेशर को निकालने के लिए कोई ऐसी विधि तो अपनाई हुई नहीं है, जैसे कुकर है ना, सीटी लगी हुई ऊपर, प्रेशर बढ़ा पूरा प्रेशर निकल गया, है ना, चावल पक रहा है दाल पक रही है, लेकिन हमारे पास क्या सिस्टम है, कि हमारे अंदर तनाव हुआ, अंदर थॉट में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की भावना पनप रही है, गुस्सा भी आ रहा है मुझे, अब मैं अपने आप को रिलैक्स कर नहीं पा रही हूं क्योंकि मेरे पास कोई विधि नहीं है, तो क्या करते हैं? घर का गुस्सा ऑफिस में, फील्ड में, और फील्ड का फिर जिनके अंग संगम रहते हैं उनके ऊपर निकालते हैं। अब वो भी डिस्चार्ज है। जैसे मान लीजिए हम सेवा केंद्र में हैं, हम निमित्त हैं कुछ 15-16 बहनों को संभालने के। मान लीजिए मेरा किसी बात को लेकर प्रेशर बढ़ा, सेंटर पे वो कार्य था, जमीन जायदाद से रिलेटेड कुछ था, सेंटर बनाना था, कोई मुझे प्रेशर में ला रहा है। अब मैंने अगर अपनी बैटरी सही चार्ज नहीं की तो मैं अपना प्रेशर किसके ऊपर निकालूंगी? जो मेरे साथ रहती हैं सिस्टर्स, उनके ऊपर मैंने प्रेशर निकाला। अब क्या वो समझ पा रही है क्या कि दीदी अभी खुद प्रेशर में है? वो छोटे हैं, उनको मेरे से केवल क्या चाहिए, केवल क्या चाहिए? प्यार। प्यार के सिवा वो मुझसे कुछ नहीं चाहते। वो ये भी नहीं समझते हैं, मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण दे रही हूं, वो ये भी नहीं समझते हैं कि अभी इनको कुछ प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है, चाहे फिजिकली हो सकती है चाहे फिर वो सेंटर से रिलेटेड कोई हो सकती है, चाहे सेवा केंद्र में जो भाई बहन आ रहे हैं उनका भी कुछ प्रेशर हो सकता है, कुछ हो सकता है। वो किसके ऊपर होगा? वहां पर बॉस के ऊपर होते हैं ना, तो वैसे यहां भी हो सकता है। अब मान लीजिए उसी थॉट में मैं हूं तो मैं उनके ऊपर तो नहीं निकाल पाऊंगी, बाहर वाले व्यक्ति के ऊपर तो प्रेशर नहीं निकाल पाऊंगी, तो मैं क्या करूंगी? मेरे साथ जो रह रहे हैं उनके ऊपर मैंने प्रेशर निकाला। अब उनको तो केवल चाहिए था प्यार, उनको तो चाहिए था केवल कंफर्ट कि हमने जो बोला वहां से बस जी होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। और मैंने कहा नहीं, अभी ये चीज नहीं हो सकती, तो वो तो छोटे हैं ना, उनको तो समझ भी नहीं है उन चीजों की, तो वो थॉट फिर उनके चलने लगे, कौन से? वेस्ट या नेगेटिव। अब जब वो उस प्रभाव में आ रहे हैं तो उन्होंने अपने छोटे के ऊपर निकाला, फिर उसने अपने छोटे के ऊपर निकाला, तो पूरा एटमॉस्फेयर कैसा हो गया? नेगेटिव। अब बाहर बहुत गर्मी है, यहां अगर ठंडक है तो आप क्या करेंगे? कितना भी आप गर्मी में घूम रहे ना तो आप कहेंगे नहीं, किसी ठंडे स्थान पे जाकर के बैठो, हाँ अच्छा लग रहा है। अब जब माइंड में वेस्ट थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स बहुत चल रहे हैं तो हमारा माइंड गर्म हो जाता है। अब गर्म हो गया तो वो निकालेगा, लेकिन ये बात नहीं है कि निकाल देने के बाद कूल हो गए, और बढ़ता है वो। एक के साथ मेरा संबंध वो वैसा था जिसके कारण मैंने 99 के ऊपर अपना प्रेशर निकाला था, 99 के ऊपर। अब आप बताइए उस एक का प्रभाव 99 के ऊपर पड़ गया तो मेरे संबंधों में मधुरता रहेगी कि कड़वाहट रहेगी? वो 99 नहीं समझ रहे हैं कि मैं कई प्रॉब्लम को फेस की हूं, वो नहीं समझ रहे हैं। तो वो एक को ठीक कर लिया जाए और 99 को प्यार दिया जाए, या 99 के साथ भी उसी प्रेशर में रहा जाए, चॉइस आपकी है, क्या करना चाहेंगे? एक को ठीक। फिर एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि वो एक ठीक होने को तैयार नहीं है। ये प्रैक्टिकल बातें चल रही हैं क्योंकि आप सभी भी, हम सभी भी इन बातों को फेस करते हैं अपने जीवन में। अब वो ईगो के कारण आप झुक रहे हैं बार बार उसके आगे, प्यार से उसको समझाया भी जा रहा है, लेकिन कुछ है ऐसा उसके अंदर जो वो आग के आगे झुकने को तैयार नहीं है। और फिर हम सोचते हैं कि इससे किनारा कर लिया जाए, इससे हम दूर ही रहते हैं। अब बाहर के संबंधों में तो फिर भी दूरी बनाई जा सकती है, लेकिन जो घर में ही रह रहा हो, चाहे वो पत्नी है, चाहे पति है, चाहे बच्चे हैं, छोड़ देंगे क्या? 19-20 साल का, 25 साल का रिश्ता है और उसी टेंशन में हम लोग जी रहे हैं, तो क्या 25 साल के बाद डिवोर्स दे देना ये समझदारी है कि उन्हीं के साथ रहना पड़ेगा? अब उनके साथ रहते हुए अपनी बैटरी को हमको इतना चार्ज करना पड़ेगा, इतना चार्ज करना पड़ेगा कि अगर वो कुछ रिएक्ट कर भी रहे हैं तब मैं अपने आप को शांत रख सकूं। तो मुश्किल लगता है कई बार, हम सबको मुश्किल लगता है। तो बहुत अच्छी बातें हमारे परमात्मा महावाक्यों में आती हैं, जिसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में मुरली कहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि पहले ना आप कर्म में जो करते थे, चाहे हाथ उठ गया, चाहे कान खींच दिया, कर्म को अभी रोको। ये संकल्प कर लो कि हम कर्म में जो संकल्प में मेरे अंदर भाव आ रहा है, मैं उसको कर्म में नहीं आने दूंगी। ठीक है, आपको 7 दिन, 15 दिन, 1 महीने में लगेगा कि हाँ, अब मैं कर्म में इस प्रकार के प्रभाव में नहीं आ रही हूं। जो मेरा पहले हाथ उठ जाता था, अब हाथ नहीं उठ रहा है। बच्चों को लेकर के भी वो बात हो सकती है। अब चलो, इस पर मैंने विजय प्राप्त कर ली तो खुशी तो होगी कि पहले लगाया चांटा बच्चे को, ज्यादा जिद्द किया तो 1 लगाया, नहीं अब हाथ नहीं उठा रही हूं, हाथ नहीं उठा रहा हूं। अब दूसरी बात आप लीजिए कि अब मैं बोल पर कंट्रोल करना शुरू करती हूं। बोल में अपशब्द निकल रहे हैं, तो क्या वो अपशब्द केवल सामने वाले को दुखी कर रहे हैं कि आपको भी दुखी कर रहे हैं? क्या लगता है बोलने के बाद, जब हम बोल देते हैं ना, और मान लो वो सुबह बोल दिया ना, तो लगता है अरे मैं नहीं बोली होती ना, नहीं बोला होता ना तो अच्छा रहता, पूरा मूड ऑफ हो गया मेरा। क्योंकि सुबह मैंने 5 मिनट या 2 मिनट या 1 मिनट गुस्सा किया था और उसका प्रभाव दिन भर चला, केवल 2 घंटे की बात नहीं है, पूरा दिन भर चला है। जैसे भक्ति मार्ग में हम लोग उपवास रखते ना कि प्याज नहीं खाएंगे, लहसुन नहीं खाएंगे, या आज दिन भर निर्जला रहेगा, जल भी नहीं पियेंगे, या सोचते हैं जल पियेंगे, बाकी की चीजों का त्याग करेंगे, या कभी हम केवल फलाहार करते हैं। कंट्रोल कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? आपने ऑर्डर कहाँ दिया था? माइंड में दिया था, है ना? और उसको आपने फॉलो किया। हम लोग बचपन में संतोषी माँ का व्रत रखते थे, माँ ही रखवाती थी। अब बाई चांस स्कूल जाते थे हम, अब अचार तो विशेष पसंद होता ही है बहनों को, बच्चों को, तो अगर किसी दूसरे के घर का अचार है तो वो और पसंद आता है अपने घर की तुलना में। तो वो आ गया और मान लो यहाँ तक चला भी गया, तो फिर बार बार तू तू करके निकालते थे। क्यों? कहीं संतोषी माता नाराज न हो जाए। कितना ध्यान रहता था उपवास में, व्रत नियम में। ऐसे ही कर्म आया, अब बोल, है ना? अब बोल में जो अपशब्द निकलते, कभी कभी तो कोई गालियां भी देते हैं, निकलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन कहते इतना प्रेशर बढ़ा ना, मुख से निकल गए। अब बचपन में जिस एटमॉस्फेयर में रहे हैं, जो गालियां सुनी हैं उस एटमॉस्फेयर में, तो गालियां आती सबको है। एक बात प्रैक्टिकल बता रही हूं, अब ज्यादा ही प्रेशर बढ़ा, मुख से वो गाली निकली, अब यहां पर कंट्रोल करना शुरू करो। नहीं, कुछ भी हो, मैं इस मुख से ना अब शब्द का प्रयोग नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। हमारी वो मुरली में एक बात बहुत अच्छी आती है कि कई बार है ना, कोई इस प्रकार का बिहेव करता है तो हम कहते हैं ना पागल है, इसे ना पागलों से हरकत करता है। अब ये पागल शब्द कहना भी अच्छा है कि बुरा है, किसी को मैंने पागल का टाइटल दे दिया। अब मान लीजिए हम इतने वर्षों से मान लीजिए मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर बढ़ा और मैंने किसी को कह दिया पागल है ये, तो उन वाणियों में आता है कि आप तपस्या कर रहे हैं और आपके मुख से ऐसे शब्द निकले तो वो भी सामने वाले के लिए कई बार अभिशाप बन जाते हैं। जैसे हम भक्ति मार्ग में सुनते कि ऋषि मुनि बहुत तपस्या करते थे, विश्वामित्र जी का उदाहरण आता है, बहुत तपस्या करते थे, दुर्वासा विश्वामित्र ये भक्ति मार्ग के उदाहरण हैं, लेकिन क्रोध को उनकी तपस्या का बल मिल जाता था। कहते विश्वामित्र जी को दुर्वासा के आगे कुछ ऐसा नहीं बोलना, अगर उनके मुख से कुछ निकल गया तो वरदान नहीं देंगे, वो क्या हो जाएगा अभिशाप। मान लीजिए कोई व्यक्ति 15-20 साल से मेडिटेशन कर रहा हो, आना तो नहीं चाहिए वैसे क्रोध, तो ये समझना पड़ेगा कि वो मेडिटेशन में केवल सीटिंग में है या मन की भी सेटिंग है। सीटिंग अलग है कि आप आके बैठ गए ध्यान में, 1 घंटा बैठे हैं, 2 घंटा बैठे हैं, लेकिन मन की सेटिंग 2 मिनट के लिए भी नहीं हुई, तो वो केवल तन की सीटिंग हुई थी, मन की सेटिंग हुई नहीं। और जब मन की सेटिंग हुई नहीं तब क्या होता है, ये जो कर्म में, बोल में, संकल्पों में वो प्रभाव दिखाई देता है। तो जिस प्रकार उपवास में आपने दृढ़ता के साथ शास्त्रों के नियमों का पालन किया, उसी प्रकार आपको अब मन को ऑर्डर देना है। देख लीजिएगा आपको खुशी होती जाएगी। जैसे कोई बच्चा है ना, नर्सरी क्लास से KG1, KG1 से KG2 अच्छे नंबरों से पास होता हुआ या पास होता हुआ आगे बढ़ता है, तो उसको खुशी होती है कि दुख होता है? खुशी होती है ना, वाह अब मैं क्लास 5th में आ गया, मैं 6th में जाने वाला हूँ। तो वैसे ही कर्म में कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आ गई पास, तो मुझे खुशी होगी। अब बोल में आ गई, बोल में भी मैंने अप शब्द अब मुझे नहीं बोलना है, इसका उपवास कर लिया और मैंने 1 महीने 15 दिन इस पर विजय प्राप्त कर ली, तो खुशी होगी कि दुख होगा? खुशी। लेकिन अब रही है बात संकल्प की, मनसा की। कभी कभी जब हम बोल पर कंट्रोल कर लेते हैं, कर्म में भी आ जाती है वो बात, लेकिन ना किसी किसी के लिए थॉट बहुत चलते हैं। जैसे आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन आप एक श्रेष्ठ मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या एक श्रेष्ठ मार्ग पर भी आगे बढ़ते हुए नदियों का, पर्वतों का, झरनों का, पत्थरों का, कटीली झाड़ियों का सामना नहीं करना पड़ता क्या? जब आपको बहुत एप्रिसिएशन मिलने लगता है, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो आपकी टांग खींचते हैं, लैग पुलिंग उसको कहा जाता है। अब हमारे अंदर आता है कि मैंने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? तो आपको थोड़ा स्टेबल होना होगा कि सामने वाले के अंदर मेरे लिए कुछ ईर्ष्या का भाव है। अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, अगर सभी परिस्थितियों की बातें हम करने लगे तो 24 घंटे कम पड़ जाएंगे, तो किसी को हमारे से ईर्ष्या रहती है, द्वेष रहता है कि अभी 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 आए और इतना आगे कैसे बढ़ गए। आपके फील्ड में भी ये होता होगा, हम इतने सीनियर और ये जूनियर बड़ा जल्दी रन कर रहा है। वो बॉस के आगे भी खूब ऐसे आगे आगे नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी योग्यता, उसकी सरलता, उसका जो कार्य के प्रति डिवोशन है वो उसको आगे बढ़ा रहा है। और जो सीनियर था 10-15 साल के बाद भी वो एक, उसकी कोई गति ही नहीं है, कोई गति ही नहीं है, तो नेचुरली आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको अब ईर्ष्या द्वेष का भी सामना करना पड़ेगा, ये परिस्थितियां आएंगी। आपकी आगे हमारी आदरणीय उषा दीदी जी भी क्लास लेंगी, जरूर सुनिएगा उनकी क्लास को। उनकी उस क्लास को सुन के, एक लाइन को सुन के मुझे बहुत बल मिला था, क्योंकि जब मैं आपसे प्रैक्टिकल बातें करूंगी तो आपको अच्छा लगेगा। ऐसे नहीं इस सीट पर बैठ कर के हम लोग पहले से परफेक्ट बन करके आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ने भी कुछ फेस किया है या कई बार बहुत कुछ चीजों को फेस किया है, तब वो स्थिति धीरे 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 बनती है। तो मैं बता दूं, मैं तो सभा के आगे बता देती हूं कि थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ज्यादा इमोशनल नेचर अभी भी है ना, सेंसिटिव है ना। किसी को मेरे द्वारा दुख नहीं मिलना चाहिए, भले मैं दुखी हो जाऊं, लेकिन क्या ये बात ठीक है क्या कि मैं उसको सुख देने का, खुशी देने का प्रयास कर रही हूं, लेकिन कई बार मैं अंदर 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 घुट रही हूं, मैं बोल भी नहीं सकती, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो चाहे बराबर वाले हो, मुझे बोलना भी नहीं आता। मुझे ये जिस तरीके से बोलना आता है ना, वो वाला नहीं आता। ठीक है, तो वो अंदर 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 घुटेगा तो सही। और एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया जाता है कि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, तो कई बार हमारी स्थिति बॉयल फ्रॉग जैसी हो जाती है। बॉयल फ्रॉग, एक मेंढक का उदाहरण लेते हैं कि उस मेंढक के अंदर एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को बाह्य वातावरण के साथ एडजस्ट करता है। और जैसे हमने उसको पॉट में रखा और पानी को हीट करना शुरू किया, तो जैसे जैसे पानी गर्म होता जाता है, मेंढक अपना टेम्परेचर एडजस्ट करता चला जाता है। लेकिन जब लास्ट डिग्री पे पानी पहुंच जाता है, तब मेंढक के अंदर ये ताकत नहीं रहती कि वो पॉट में से कूद करके बाहर जा सके। तो कई बार हम सबकी स्थिति ऐसी हो जाती, हम अपने आप को एडजस्ट करते चले आते हैं, एडजस्ट करते चले आते हैं, उसके बाद हमें क्या लगता है, इसको भी प्यार दिया, इसको भी प्यार दिया, इसको भी प्यार दिया, इसके लिए भी सब कुछ किया, इसके लिए भी सब कुछ किया, इसके लिए भी सब कुछ किया, लेकिन मैं तो अंदर टूट रही हूं। मैंने 100 को प्यार देने का प्रयास किया, लेकिन मेरे जीवन में तो शून्य आ रहा है, मेरे लिए तो कोई सोच ही नहीं रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया कि हमेशा ना ऊपर से ही नीचे पानी आएगा, नीचे से ऊपर नहीं आ सकता। तो बड़ों को ही देना है तो उनको अपने आप को बहुत चार्ज रखना पड़ेगा। मैं भी प्यार की प्यासी हूं, ये किसी ने समझा ही नहीं, बस हर ने प्राप्त करना चाहा। ये थोड़ा सा तो डेवलप सबके अंदर होता है, क्योंकि ज्योति बिंदु तो है परमात्मा, वो दिखाई नहीं देता, वो प्यार का सागर है। तो हम ढूंढते हैं बाहर प्यार कि कोई तो मेरे से भी थोड़ा सा प्यार से बात कर लेना, तो मुझे भी तो अच्छा लगे। और 15 एक ही के ऊपर हावी हो गए तो उसकी स्थिति क्या हो जाती। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। तो कई बार ऐसा भी होता था कि मैं उनसे ईर्ष्या नहीं कर रही हूं, मैं उनसे द्वेष नहीं रख रही हूं, वो अपनी योग्यताओं के आधार पर आगे बढ़े और परमात्मा ने मेरे अंदर जो क्वालिटी दी है उस क्वालिटी के द्वारा मैं आगे बढ़ूं। लेकिन वो ईर्ष्या कर रहा है और मेरे बारे में कुछ फैला रहा है, मान लीजिए जो कर्म मैंने नहीं किया है, और वो कर्म जब फैलता है जो मैंने नहीं किया, तो थोड़ा तकलीफ तो होती है ना कि मैंने नहीं किया और इस बात को लेकर के मेरी बुराई की जा रही है। तब मैंने वो बात जो मैंने आदरणीय उषा दीदी जी से सुनी थी कि कोई आपसे ईर्ष्या कर रहा है, उसका प्रभाव आप अपने ऊपर मत पड़ने दो। अगर आपके ऊपर भी उस ईर्ष्या का प्रभाव पड़ गया तब आप धीरे 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 डिप्रेशन में चले जाएंगे। और एक बात कही थी, आप सब ध्यान से सुन लीजिए, उसको भले नोट कर लीजिएगा अपने जीवन में। मैं सारी बातें प्रैक्टिकल बता रही हूं, दिनचर्या से रिलेटेड, उसमें आध्यात्म की क्या भूमिका है। मेरे भाग्य को छीनने की ताकत जो मैंने अपने कर्म के आधार पर निर्मित की है, जो मेरा भाग्य बनाया है, उस भाग्य को छीनने की ताकत स्वयं परमात्मा में भी नहीं है तो मनुष्य की क्या औकात है, मनुष्य की क्या औकात है। ताली बजनी चाहिए इस बात के लिए, मेरे लिए नहीं लेकिन इस बात के लिए। भगवान भी, मैंने जो श्रेष्ठ कर्म किए हैं और भाग्य निर्मित किया है उसको भगवान भी नहीं छीन सकता, तो फिर मनुष्य की क्या औकात है। लेकिन अगर दूसरों की ईर्ष्या घृणा द्वेष का प्रभाव मेरे मानसिक पटल पर आ गया तो धीरे 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 डिप्रेशन की स्थिति और बढ़ जाएगी। आजकल अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, पहले तनाव, फिर स्ट्रेस, फिर डिप्रेशन, हाई डिप्रेशन, है ना। इंग्लिश वर्ड्स हमने बहुत अच्छे अच्छे ले लिए और 21वीं सदी को तो घोषित ही कर दिया कि ये हाई डिप्रेशन वाली ना सदी होगी। देख भी रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे कोई भी आप क्षेत्र देख लीजिए, तो उसमें आज लोगों की स्थिति क्या हो जाती है। उसको फेस करने के लिए पावर तो चाहिए ना, और वो पावर पॉजिटिव थिंकिंग की क्लासेस से ही प्राप्त होती है। पहले भी मैंने कहा ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है कि एक दिन में हो जाता है। आज हम लोग भी, हमारी दादियां भी, आज हमारी दादी रतन मोहिनी दादी जी जो अभी संस्था की चीफ हैं इस ईश्वरी परिवार की, वो भी रेगुलर पॉजिटिव थिंकिंग की क्लासेस करती हैं। ये नहीं कि 1937 से तो सुन रहे हैं, अब क्या ज्यादा सुनना, नहीं। आप अगर रोज सुनते हैं तो क्या पता कौन सी बात माइंड में एकदम क्लिक कर जाती है और हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। नेचुरली हम लोगों ने भी तो उस अवस्था में ये क्लासेस की, और कब फिर हम इस ईश्वरी परिवार में समर्पित हो गए हमें पता ही नहीं चला। हमें भी तो लगा होगा वाह, बस वाइट ड्रेस पहनेंगे, लोगों को ज्ञान सुनाएंगे। हमें क्या पता था कि हमको भी कुछ फेस करना पड़ेगा, इस जीवन में भी कुछ फेस करना पड़ेगा, हमें नहीं मालूम था। लेकिन ये पॉजिटिव थिंकिंग की क्लासेस जब से इस ईश्वरी परिवार से जुड़े मिस नहीं की। आज की भी पॉजिटिव थिंकिंग की क्लास मैं पढ़ के आई, चूंकि आप लोगों की क्लास करानी थी इधर, कि परमात्मा के साथ कंबाइंड रहो। जब आप परमात्मा के साथ कंबाइंड रहेंगे ना, तो जो आने वाली परिस्थितियां हैं या आती हैं उसको आप फेस कर पाएंगे। नहीं तो हमारे अंदर की विल पावर क्या हो जाती है, बहुत कमजोर हो जाती है। फिर हम कहेंगे नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता। पहले था, कई बच्चे आते हैं ना काउंसलिंग के लिए भी, तो कहेंगे कि मैं पहले बहुत होशियार था, अब पता नहीं क्या हो गया, मुझे बहुत डर लगता है, पसीना पसीना हो जाती हूँ। क्यों हो रहा है ये सब? एक प्रैक्टिकल बात बताती कि अगर मान लीजिए थोड़ा सा घुटने में या कमर में दर्द होना शुरू हुआ, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक, डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है मैं आपको 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए दवाइयां लिख करके दे रहा हूं, लेकिन दवाइयां परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप एक्सरसाइज कीजिए वॉकिंग कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए। ये तीन बातों पर डॉक्टर्स बहुत जोर देते हैं। आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो एक घंटा आप वॉकिंग कर लीजिए मॉर्निंग में, है ना, कर लीजिए, और हेल्दी डाइट लीजिए। तो आप पूछते हैं हेल्दी डाइट क्या होती है, तो डॉक्टर कहेंगे कि आप नाश्ते में अंकुरित लीजिए, सलाद लीजिए, तेल की मात्रा कम कर दीजिए, है ना, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, तेल कम कर दीजिए। अच्छा, ये सब हेल्दी डाइट है। फल लीजिए, खाने के एक डेढ़ घंटे पहले आप फल ले लीजिए, नाश्ते में आप सलाद ले लीजिए, रात के खाने में आप जल्दी खा लीजिए 6:30-7 बजे। हम सोचते हैं हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और दवाइयां भी हम लेते हैं। 15 दिन में बड़ी अच्छी रिजल्ट मिलती है, दवाइयों की भी और हेल्दी डाइट, वॉकिंग, एक्सरसाइज, सबके अच्छी रिजल्ट मिली। वाह, घुटने का दर्द तो ठीक हो रहा है, कमर का दर्द तो ठीक हो रहा है। फिर 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद एक पावरफुल चीज है जो हमें बहुत प्यार करती है, वो कौन सी है? हाँ, बहुत प्यार है उसको, हमारे से इतना प्यार है ना, जिसके कारण ही सब गड़बड़ होता रहता है, लेकिन वो हमें बहुत प्यार करती है। आपको लगेगा जो प्यार करता है उसको तो प्यार करना चाहिए ना, तो सबसे पहले हमें आलस्य, नींद, जो हम मॉर्निंग में उठकर 5 बजे वॉकिंग में जा रहे थे, है ना, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, 1 घंटा वॉकिंग कर रहे थे, अच्छा भी लग रहा था, आराम मिल गया था, अब 1 महीने के बाद थोड़ा सा आलस्य ने घेरा, अब तो थोड़ा घुटना ठीक हो गया, अब तो थोड़ा कमर दर्द ठीक हो गया, आज सो जाता हूँ, मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, नहीं पक्का नेक्स्ट मंडे से तो रेगुलर, 1 भी दिन मिस नहीं होगा। 7 दिन मिस हुआ, फिर 7 दिन मिस हुआ, फिर घुटने का दर्द, फिर कमर का दर्द, सब कुछ छूट गया। अब हमने सोचा ये घुटने का दर्द है ना, जीवन पर्यंत चलता रहेगा। अब घुटने का दर्द भी चलता रहा, हमारा काम भी चलता रहा, हमको लगा दवाइयां सबसे ठीक है, एक एलोपैथिक दवाई अंदर डालो, पानी पी लो, थोड़ा सा तो आराम मिल ही जाता है, और हमने उसको जीवन का अंग बना लिया, उस दर्द को। जिससे फायदा हो रहा था उसमें हमको मेहनत लगी और हमने छोड़ दिया। उसी प्रकार जब ये दर्द का पता है, ऐसी एक होता है मन का दर्द। कैसे पता चलता है कि अब हम मन के दर्द के प्रभाव में धीरे धीरे आ रहे हैं? छोटी छोटी बात में हमें रोना आने लगता है। किसी ने कुछ अच्छा ही समझाया, अच्छे से ही समझाया, लेकिन मन भरा हुआ है, रोना आता है, उदासी की लहर, गुमसुम से बैठे हुए हैं, क्रोध का लेवल बढ़ता चला जाता है, कोई चुप रहता है, कोई क्रोध करता है। अब ये दर्द तो है, क्योंकि ये दर्द हमारे अंदर की खुशी को हमसे छीन रहा है, हम खुश नहीं है। कोई हमसे पूछता है ना कैसे, तो कहते ठीक है, ये जवाब मिलता है ठीक है, तो कैसे है का जवाब क्या मिलना चाहिए, बहुत अच्छी हूं या बहुत 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 अच्छी हूं। परसों मुझे बिलासपुर से फोन आया, मैं बिलासपुर की हूँ, तो अभी मैं 2 महीने से माउंट आबू में ही हूँ, किसी कारणवश हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि दीदी आप कैसी हैं, कुछ फेस करना पड़ा, लेकिन मुझे आनंद आया कि मुझे पहली बार माउंट आबू में 2 महीने रहने के लिए मिल रहा है, मैंने बहुत इंजॉय किया है। तो मुझे वो प्रॉब्लम बहुत छोटी लगी। तो उन्होंने पूछा कि दीदी कैसी हैं आप, तो मैंने 3 बार कहा 4 बार कहा शायद, बहुत 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 अच्छी हूँ, 4 बार कहा। दीदी हम लोग ऐसा कब कह पाएंगे। उनका मतलब आगे की लाइन थी कि दीदी हम ऐसा कब कह पाएंगे कि मैं बहुत 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 अच्छा हूँ, क्योंकि वो कुछ प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे और उनको मालूम था कि दीदी यहाँ ऐसे ही नहीं रुकी हुई है, कुछ कारण से रुकी हुई है। तो इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया, हम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। बोले दीदी हमारे मुख से ऐसा निकलना चाहिए ना। तो मैंने कहा हो जाएगा, हो जाएगा। जैसे जैसे आज देखिए आपको एक प्रॉब्लम है, हम लोगों के साथ भी होता है कई बार हमें लोग समझ नहीं पाते। हम मुस्कुराते बहुत है ना, तो लोग हमारे दर्द को समझ ही नहीं पाते, ये भी होता है। अब मान लीजिए हमने किसी को अपना दर्द बताया भी, तो लगता है कि हाँ बता तो दिया, थोड़े हल्के हो गए, लेकिन जिसको बताया है ना वो भी दर्द में है, तो क्या वो आपके दर्द को ठीक कर पाएगा। बताएं किसको, जो उसका उपाय समाधान हमें बता सके। तो वो सुप्रीम सर्जन परमात्मा, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, वो समाधान दे सकता है। हमें कोई फिजिकली प्रॉब्लम हुई तो हम डॉक्टर को सर्जन को ही तो जाके बताएंगे ना। आम इंसान को बताया, हमारे यहाँ भारत में ऐसा है कि जितने लोगों से आप मिलेंगे ना उतने उपाय वो बताएंगे। वो कहेगा ये करो, वो कहेगा ये करो, वो कहेगा ये करो, और कई बार सब करते 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 हम थक जाते हैं। कई बार हम ऐसे बहनों को प्यार से कहते हैं, सुनो सबकी, करो अपनी, करो गलत वाली नहीं। किस चीज से आपको फायदा हो रहा है उस तरफ आप आइए, और आप चुनाव खुद कर लेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो डिसीजन पावर पॉजिटिव थिंकिंग की क्लासेस के माध्यम से और मेडिटेशन के माध्यम से डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। चाहे वो फिजिकली प्रॉब्लम भी क्यों ना हो, वो आपको समाधान मिलेगा, वो ज्योति स्वरूप है, लेकिन एक शांत स्थिति में उत्तर मिलता है। मुझे बहुत अच्छी लगती है वो बात भगवान की कि बच्चे तुम चिंता नहीं करो, मैं हूं ना, मैं हजार भुजाओं के साथ तुम्हारे साथ हूं, और जब भी तुम दिल से कहोगे, हम परमात्मा को प्यार से बाबा कहते ना, कि मेरे साथी मेरे बाबा आ जाओ, मदद करो, तो मैं दौड़ा चलाऊंगा। ये लाइन जैसे अंदर में चली गई, परिस्थितियां हैं एक तरफ, लेकिन जैसे ही स्व स्थिति श्रेष्ठ बनी तो परिस्थिति उसके आगे बहुत छोटी लगी, बहुत छोटी लगी। जैसे उदाहरण देते हैं शिव बाबा मुरली में, कि अगर आप प्लेन में सफर करते हैं तो जब प्लेन एक स्टार्ट होता है तो शुरू में तो आपको सब कुछ दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे खेत इतने से दिखाई देने लगते, मकान इतने इतने से दिखाई देने लगते, लेकिन जब एकदम ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो कुछ नहीं दिखाई देता, केवल बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं। मैं प्लेन में बैठी नहीं तो मुझे अनुभव हुआ यहाँ से परम धाम बिल्कुल पास है, माना हमारा घर जो है ना एकदम पास है, वहाँ इसका अनुभव करना कितना अच्छा लगेगा। माना इस अनुभूति की ओर परमात्मा जाने के लिए कह रहे हैं, यानी बुद्धि को प्लेन बना लो तब उड़ेंगे, मन बुद्धि को प्लेन कर लो तब उड़ेंगे, लेकिन हम वेस्ट और नेगेटिव में आ करके खुद अपने गलत वाले कार्मिक अकाउंट जीवन में तैयार करते रहते हैं, और जब वो तैयार होते रहते हैं तब हम खुद दुखी होते हैं। इसको भी आप समझ लीजिए, आपको बड़ी दीदियां आगे बताएंगी, और कि कैसे पता चलता है ना, कल हमारी बातचीत हो रही थी दाता जी के साथ, कब हमें पता चलता है कि हमारे कार्मिक अकाउंट चुकतू हो रहे हैं या बन रहे हैं, है ना। मान लीजिए आपने मुझे एक शब्द बोला, अब शब्द है या गाली है या जो भी है, मैं अगर एक श्रेष्ठ स्थिति में हूं तो मैं प्रतिउत्तर नहीं दूंगी, और इस बात का एहसास होगा कि इन्होंने मुझे बोला लेकिन मैंने रिएक्ट नहीं किया, तो मेरा पूर्व जन्म का डिलीट हुआ, मुझे नहीं बोलना है, डिलीट हुआ, थॉट में भी नहीं लाना है, ठीक। लेकिन मान लीजिए आपने बोला, एक बोला, मैंने दो बोला, फिर आपने चार बोला, मैंने छह बोला, ऐसे थोड़ी चुप रहूंगी। इतना तो मेरी सहन शक्ति की परीक्षा लेते जा रहे हो। काम नहीं चलता है वर्तमान समय में, इस दुनिया में बनना ही पड़ता है, जैसे को तैसा। ये आता है हमारे अंदर भाव, फिर वो 10, मैं 15, वो 20, फिर मैं 25। तो अब मैं क्या कर रही हूं, चुप तो होता मेरा कार्मिक अकाउंट, उन्होंने एक बोला था, मैं शांत हो जाती तो, लेकिन मैंने 25 बोल करके मेरा खाता नेगेटिव वाला तैयार कर लिया। अब मैं खुश रहूंगी कि दुखी रहूंगी? दुखी, ऑटोमेटिक प्रोसेस है ये, न्यूटन का सिद्धांत, हर क्रिया की प्रतिक्रिया और हर क्रिया की विपरीत क्रिया भी होती है ना। और इस प्रकार आगे आप सारा समझते जाएंगे, क्योंकि आज मैं फिल्म का ट्रेलर आपको दे रही हूं। आगे के चार दिन जो मॉर्निंग वाले सत्र है ना, वो आप मिस मत करना, इसलिए बैठे हैं आज उस दिनचर्या को बताने के लिए। तो हमको ये चीज समझनी होगी कि मुझे किस प्रकार का जीवन चाहिए। आध्यात्म को इस अर्थ में न समझिए कि आपको कोई वाइट ड्रेस पहन लेना है, कोई आपको बैच लगा लेना है, ऐसी कोई बात नहीं है। आध्यात्म वाइट ड्रेस पहनने नहीं बोल रहा है आपको, आध्यात्म आपको केवल ये बैच पहनने के लिए नहीं बोल रहा है। ये तो हम लोग समर्पित बहने हैं, तो हम लोगों का ये यूनिफॉर्म है। आप लोगों को नहीं कहा जा रहा है, आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप 24 घंटे में एक घंटा निकालिए। हो सकता है कि कई बातें आपको समझ में न आ रही हो, कई बातों को लेकर के प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो सकते हैं। हमारे यहाँ एक थॉट देते हैं कि प्रश्न चित्त कभी भी प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता, तो क्या प्रश्न न पूछे? पूछना चाहिए, है ना। विशेष सत्र होते हैं, आप अपने स्थान पर भी जाएंगे तो वहां की दीदियों से भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर एक एक प्रश्न शुरू हो जाए तो समय चला जाता है, इसीलिए हम लोग इस समय प्रश्न उत्तर का सेशन नहीं लेते हैं। प्रश्न होंगे जरूर, लेकिन मैं एक बात आज आपको गारंटी के साथ कह देती हूँ, गारंटी, इतनी बड़ी गारंटी देना। आज दुनिया में आप कोई चीज खरीदेंगे ना तो 2 साल 3 साल 5 साल की गारंटी होती है। मैं परमात्मा की ओर से 5000 वर्ष के लिए आपको गारंटी दे देती हूँ, और इस जन्म के लिए तो बिल्कुल, मतलब आप उसको सोच लीजिए दृढ़ता के साथ कि अगर आपने रेगुलर यहाँ की पॉजिटिव थिंकिंग की क्लासेस की, रेगुलर मुरली सुनी, आपके जीवन में कोई प्रश्न नहीं रहेगा। ये मत सोचना कि समझ में नहीं आ रही है। अभी देखिए, हर सेंटर पर अलग अलग दीदियां होती हैं। जैसे मान लीजिए CBSE की पढ़ाई है, 10th 12th की एग्जाम देते हैं, इतनी स्कूल हैं, है ना, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिंदी इंग्लिश मैथ्स हर टीचर एक जैसा पढ़ाता है कि अलग अलग? तो यहाँ पर भी इतने सेंटर्स हैं हमारे, हर शहर में है हमारे सेंटर, पढ़ाई वही है जो माउंट आबू, जिसको हम मधुबन कहते हैं, यहाँ जो चल रही है वही पढ़ाई वहां पर चल रही है, लेकिन टीचर कैसे होंगे? अलग अलग। तो किसी टीचर के समझाने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगेगा, कोई टीचर है, हो सकता है आपने जो प्रश्न किया उसका समाधान, उसका उत्तर सही रीति न दे पा रही हूँ, ये भी हो सकता है। लेकिन वो छोटी दीदी बड़े प्यार से कहती है कि भैया आप रोज आइएगा, या तो हमारी बड़ी दीदी उत्तर दे देगी, या मुरली में ना स्वयं परमात्मा शिव बाबा उसका उत्तर दे देंगे। फिर मीडिया वाले हमारे एक बात जरूर कहते हैं कि दीदी बाकी सब लोगों की तो दिनचर्या सेट रहती है, हम लोगों को तो थोड़ा रात को भी जागना पड़ता है, हम लोग 2-3-4 बजे तक तो सोते हैं सुबह, कई लोग ये प्रश्न करते हैं हम लोग से, तो हम लोग कैसे मेडिटेशन को अपनाएं, कैसे हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग की क्लासेस सुनने के लिए सेवा केंद्र पर जाएं। ठीक है, आप मान लीजिए 3-4 बजे सोते हैं मॉर्निंग में, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, जो उठने का समय है, उस समय आप सोते हैं। ठीक है, अब आप उसी समय 5 मिनट मेडिटेशन करके सो जाइए, नींद भी बड़ी अच्छी आ जाएगी। और जब आप उठे, उठने के बाद भी अगर फ्रेश होकर नहा धो करके आप थोड़ा 5-10 मिनट मेडिटेशन कर लेते हैं, और फील्ड में जाने के पहले आप सेवा केंद्र में 10 मिनट के लिए, आप दीदी को वहां बता दीजिए कि मुझे आप 5 मिनट ही बस क्लास कराइए, मेरे पास वक्त इस प्रकार नहीं है। वो मैं बहुत अच्छी बात एक बार सुनी थी कि हर चीज है लोगों के दामन में, पर जिंदगी के लिए ही वक्त नहीं। दिन रात दौड़ती दुनिया में अपने लिए ही वक्त नहीं। माँ की लोरी का एहसास तो है, पर माँ को माँ कहने का वक्त नहीं। सारे रिश्तों को हम मार चुके हैं, अपने लिए ही वक्त नहीं। तो अपने लिए वक्त तो निकालना पड़ेगा ना। आज हमने किसको प्राथमिकता दी है जीवन में, बताइए। जो धन लास्ट में होना चाहिए वो फर्स्ट में है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि धन आवश्यक नहीं है, ये मत सोचिएगा। तुरंत एक थॉट आ जाता है, अरे कमाएंगे नहीं तो परिवार को कैसे चलाएंगे, सुख सुविधाओं को कैसे इकट्ठा करेंगे। बिल्कुल ये बात नहीं है। धन के लिए आप पर्याप्त प्रयास कीजिए, कमाइए, क्योंकि उससे कंफर्ट सुख आता है घर में, वो ठीक है। लेकिन तन मन धन और जन की बात कही जाती है। आज संबंधों में कितनी खटास आ गई है, कई बार सच्चाई है, हमारे भी जीवन की सच्चाई है कि कई बार जीवन में जो सबसे एक प्यार भरा संबंध होता है, माता पिता का कह लो, पति पत्नी का तो बाद में कहूंगी मैं वो बाद में आए हैं रिश्ते, उनके साथ बिना बैठने का वक्त नहीं है। आज ऐसी स्थिति है, आज जब उनको हमारी आवश्यकता पड़ी तो हमारे पास वक्त नहीं है। हम लोग के भी जीवन में हुआ, हम लोग भी समर्पित हो गए, अब हमको इसी दिशा में अब चलना है आगे। ऐसा नहीं है कि माता पिता से रिश्ता नहीं है, लेकिन जितना वक्त, शादी के बाद भी तो एक लड़की नहीं दे पाती है ना, और हम लोग तो इसी राह पर चल पड़े हैं। लेकिन अगर जितना मोबाइल में हम कुछ चीजों को देखने में अपना समय व्यतीत करते हैं, काश बाद में लगता है हमने माता पिता से 5-10 मिनट बात कर ली होती। क्योंकि हर आत्मा की एक एनर्जी है, अगर उसको हमने कुछ पॉजिटिव नहीं दिया और वो आत्मा आगे की यात्रा में निकल गई, तो सबसे ज्यादा दर्द तो फिर आपको ही होने वाला है। इसलिए हम लोग मेडिटेशन में कई बार क्षमा भी मांगते हैं उस आत्मा से कि मैंने आपको वक्त नहीं दिया, या आपको जो चाहिए था वो मैंने नहीं दिया। लास्ट में हर आत्मा प्यार की, शांति की और शक्ति की प्यासी होती है, और वो संबंध जब तक रहता है तब तक उसकी वैल्यू नहीं होती है। और जब वो संबंध है तो वो आत्मा, लेकिन जब वो संबंध आगे की यात्रा की ओर निकल जाता है तब उस संबंध को हम फील करते हैं। तो जितने लोगों से आप मिलते हैं और जो बड़े निकट के संबंध है, उनसे शारीरिक रूप से तो नहीं, मैं कहूंगी रूहानी आत्मिक प्यार जो ब्रह्मा कुमारी उसमें बहुत अच्छे से सिखाया जाता है, उससे हमारा मेडिटेशन बहुत पावरफुल हो सकता है। तो हेल्दी डाइट है पॉजिटिव थॉट, हेल्दी डाइट है पॉजिटिव थॉट जिसको हम मुरली कहते हैं, और एक्सरसाइज है मेडिटेशन। ये मन की एक्सरसाइज है, वो तन की एक्सरसाइज है, और ये मन की एक्सरसाइज है। तो जो पहले भी हम बात कर रहे थे कि हम अपने संबंधों में ना कड़वाहट ज्यादातर कर्म और बोल के माध्यम से ला रहे हैं। संकल्प कोई हमारे बहुत कैच नहीं कर पा रहा है, हमारे उस आत्मा के लिए संकल्प चल रहे हैं, लेकिन चूंकि उसके भी संकल्पों में स्वच्छता नहीं है, निर्मलता नहीं है, तो अगर मैं उसके लिए बुरा भी सोच रही हूं तो वो कैच नहीं कर पा रहा है। लेकिन मुझे पता है कि मेरे संकल्प कैसे चलते हैं। यहाँ पर ना हमारे ट्रेनिंग सेंटर में ही एक ऐसी साइंस के हिसाब से मशीन है कि आपको पता चल जाएगा, वो हाथ रखते हैं, कि आपकी कौन सी वेव्स माइंड में ज्यादा चलती हैं, बीटा प्लस, बीटा, अल्फा, थीटा या डेल्टा। बीटा प्लस जब बहुत थॉट चलते हैं, नेगेटिव या वेस्ट, उसमें चलती हैं। बीटा नेसेसरी थॉट में चलती हैं। अल्फा और थीट, इसका डिटेल बहुत है, एक डेढ़ घंटे का, इसकी गहराई में हम नहीं जाते। तो जब अल्फा थीटा चलती हैं, यानी पॉजिटिव थॉट्स को मैंने अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू किया है, तब अल्फा थीटा में हम आते हैं। और डेल्टा जो है वो मोस्ट पावरफुल वेव्स है। मैं एक मिनट का आपको बताती हूँ कि एक मिनट में अगर नेगेटिव या वेस्ट बहुत चलते हैं तो कई बार 30, 35, 40, 45, 50 या इससे भी ज्यादा चल जाते हैं। बीटा प्लस वेव्स तरंगे बहुत घातक, यही हाइपरटेंशन वाली स्थिति। बीटा वेव्स चलती है तो फिर धीरे धीरे कम, माना 15, 20, 25 से आए, है ना। फिर अल्फा थीटा में और 5, 10, 15 तक में आते हैं। फिर डेल्टा में 1 से लेके 5 तक का या कोई भी थॉट नहीं, केवल एक थॉट कि मैं कौन, मैं शांत स्वरूपात्मा, मैं आनंद स्वरूपात्मा, मैं प्रेम स्वरूपात्मा, इससे रिलेटेड एक थॉट, और इसी थॉट में हम खो जाते हैं। हमारी जो मुख्य प्रशासिका थी आदरणीय जानकी दादी जी, तो वैज्ञानिकों ने जब इनके ब्रेन का टेस्ट किया तो ये पाया कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और मेडिटेशन के दौरान इनके अंदर डेल्टा वेव्स ही चलती है। 1 से 5 तक के विचार, सबके प्रति प्रेम का व्यवहार। तो आदरणीय जानकी दादी जी से किसी ने पूछा था कि दादी, है ना, यहाँ हारमोनी हॉल है ना, जिसमें कल से आपकी क्लासेस चलेंगी मॉर्निंग की, और बड़ा मजा आएगा आपको हमारी सीनियर दीदियों से भी सुनने में। तो जानकी दादी जी से किसी ने पूछा कि आप इतने हारमोनी से कैसे रह लेती हैं, तो जानकी दादी जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था, मैं हार मान लेती हूँ इसलिए मैं हारमोनी से रहती हूँ, है ना। लेकिन मन से नहीं हारती, मन बड़ा स्ट्रांग है ना। तो आज सोचो, वैज्ञानिकों को लगा कि कहीं हमारे इंस्ट्रूमेंट खराब तो नहीं हो गए, क्योंकि कोई भी डेल्टा वेव्स में हमेशा नहीं रह सकता है, लेकिन हमेशा उनकी डेल्टा वेव्स चल रही हैं। तो घोषित कर दिया कि मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व के अंदर सबसे स्थिर प्रज्ञ महिला। और जब भारत में उनके प्रोग्राम होते थे ना, तो उनको देखने के लिए लोग उमड़ते थे, क्योंकि अमेरिका ने ये घोषित कर दिया था कि मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। और दादी 104 साल तक जी थी। दादी जी कभी भी किसी की बात को, ऐसा थोड़ी संस्था की चीफ थी तो कोई बातें नहीं होती होंगी, या उन्होंने जो 1937-1938 से, आज तो ब्रह्मा कुमारी इसको सब जानते हैं, है ना। आज ट्रेन में भी, अच्छा आप ब्रह्मा कुमारी से, अच्छा आप वो शिवानी दीदी वाली हैं, हाँ हाँ शिवानी दीदी वाले हैं हम लोग, है ना। तो सब जानने लग गए हैं, लेकिन उस समय हमारी दादियों ने जो ये धीरे धीरे करके एक तपस्या करके ये वट वृक्ष का रूप लाया है, उन दादियों को कोई भूल सकता है क्या। आज हम लोग तो मक्खन खाने के लिए आए हैं, मक्खन उन्होंने निकाला है, सारे बड़ों ने मक्खन निकाल के दे दिया। तो प्यार से कहती थी दादियां, मक्खन खाते भी नहीं बन रहे क्या, निकाल के दे दिया है तो मक्खन खाते भी नहीं बन रहे क्या? तो सोचिए इतना ऊंचा ज्ञान। तो जब नर्सरी का बच्चा भी, हालांकि ट्वेल्थ वाले को भी अनार का आम का लिखना पड़ता है, एबीसीडी है, लेकिन रूप परिवर्तित हो चुका है अब उस एबीसीडी का और अनार का आम का, लेकिन वो लिखना तो पड़ता है। लेकिन अगर नर्सरी के बच्चे को ट्वेल्थ में बिठा दिया जाए तो कुछ बातों को समझ पाएगा क्या? ट्वेल्थ वाले को नर्सरी में बिठा देते हैं, उसको सब में 100-100 मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? तो एक प्रोसेस है। हम समझे कि एक ही दिन में प्रश्न का उत्तर मिल जाए, सब पता चल जाए मुझे, आज एक आत्मा की भी मन की भी एक स्थिति होती है। आप देखिए, आप सब स्कूल में पढ़े हैं तो एक एक पीरियड कितने मिनट का रहता था? 40 या 45, उससे ज्यादा नहीं, एक घंटे का नहीं रहता था। एक्स्ट्रा क्लास भी अगर टीचर्स ने रख ली ना, और वो हमको सब्जेक्ट बोर लगता था, 45 से ज्यादा खिंचा रहे है टाइम, तो एक लिसनिंग कैपेसिटी भी होती है अपनी, है ना। अभी देखिए, आपका 7:45 से मैंने मेडिटेशन शुरू कर दिया, मैं ठीक 8:05, 8:10 तक खत्म कर दूंगी, क्योंकि 8:15 तक का है। ठीक, इससे ज्यादा और खींच लिया जाए तो कब खत्म करेगी दीदी? अभी तो मजा आ रहा है ना, लेकिन मैं इसी को 3-4 मैं ले सकती हूँ, लेकिन 3-4 घंटा ले लिया तो हमारी लिसनिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। इसलिए 40 मिनट्स का पीरियड रखा जाता था, ताकि हम अच्छे से सुन सकें और उन बातों को अडॉप्ट कर सकें। और कहते हैं जो अच्छा एक लिसनर होता है ना, वो ही अच्छा स्पीकर भी हो सकता है, लेकिन स्पीकर की बात हटा दीजिए, अभी तक मंच है, लेकिन जो अच्छा लिसनर रहेगा वो उन बातों को अपने जीवन में फॉलो करेगा। और जब हम उसको कर्म के क्षेत्र में ले आते हैं ना, तो आनंद बढ़ता है, खुशी बढ़ती है, और ये आत्मा के मूलभूत गुण हैं। कल आप सुनेंगे इसके बारे में कि आत्मा के जो मूलभूत गुण हैं वो 7 गुण हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। अब इसको मैंने सुना दिया, लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी आनंद का अनुभव नहीं किया, है ना, मान लीजिए, तो वह आप फील कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए आम कई प्रकार के होते हैं, हापुस आम, तो तोतापरी आम, है ना, तो बैगन फल्ली आम, हर का टेस्ट चूसनी आम, हर आम का टेस्ट क्या होता है? अलग अलग। अब किसी ने हापुस आम खाया ही नहीं, बैगन फल्ली खाया ही नहीं, तोतापरी खाया ही नहीं, है ना, बचपन से हमारे अंदर बैठा हुआ है, जो बचपन में बिठा देते हैं पेरेंट्स, मान लीजिए तोतापरी में अंदर कीड़े लग जाते हैं, मीठा बहुत होता है, तो तोतापरी खाना ही नहीं, लेकिन मीठा तो बहुत होता है तोतापरी, लेकिन उसका टेस्ट, हर आम का टेस्ट अलग 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 है। ऐसे ही मेडिटेशन में भी आपको एक अलग 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 जब टेस्ट फील होता है, तब ये मेडिटेशन की यात्रा में आप आगे बढ़ते हैं। हमेशा आप एक ही तरीके से करेंगे तो मजा नहीं आएगा ना आपको। हाँ, मैं आत्मा हूं, मुझे अपने आप को आत्मा समझना है और आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है, लेकिन कई बार ना बहुत टाइट हो जाते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो किसी किसी को क्या होने लगता है? सिर दर्द होने लगता है, ऐसा देखा गया है। तो मेडिटेशन में भी हमको मनोरंजन का अनुभव करते हुए ये एक्सरसाइज करनी है। आजकल आप YouTube में देखते होंगे, एक्सरसाइज वही है लेकिन डांस के माध्यम से एक्सरसाइज करा रहे हैं। तो हम गीत सुनते हैं, उसमें एक रिदम है और ताल से ताल मिला, तो वो ताल से ताल मिल जाती है, तो उस एक्सरसाइज में हमें मजा आता है। लेकिन एक्सरसाइज तो वही कर रहे थे ऐसे ऐसे, लेकिन एक ताल के साथ कर रहे थे, तो वो गीत भी हमारे अंदर गया, तो शरीर का सशक्तिकरण भी बढ़ा। साथ साथ जो मॉर्निंग में आपने गीत सुना, आप देखेंगे कि ना वो दिन भर हम गुनगुनाते रहते हैं, अच्छा लगता है ना। मतलब मैं अभी अपना अनुभव सुनाऊं कि अभी 2 महीने से यहाँ है, दोनों जगह शांतिवन में यहाँ, तो कुछ गीत सुन रहे थे, तो हम हर गीत को पॉजिटिव रूप में ले लेते हैं। गीत गाने का भी शौक है और गीत सुनते भी हैं, तो एक गीत निकला अंदर से, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। तो मैं परमात्मा को याद कर रही थी कि और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है, और दर्द का नाम खुदा रखा है। तो क्या दर्द का नाम खुदा है? नहीं, वो दर्द लेने वाला है खुदा, परमात्मा। जो कलयुग के समय में ये मन के दर्द बहुत बढ़ रहे ना, तन में भी कुछ हुआ तो मन का दर्द है, संबंधों में भी कुछ हुआ तो भी मन में दर्द है, धन की शक्ति भी क्षीण हुई तो भी मन में दर्द है। तो इस दर्द का नाम खुदा रखा है, माना वो खुदा हमारे दर्द को ले लेता है। कैसे ले लेता है? आप कहेंगे ले लो तो ले लेंगे क्या? नहीं, जब हम मेडिटेशन में वो आनंद का अनुभव करते हैं, प्रेम का अनुभव करते हैं, परमात्मा के साथ हम जुड़ते हैं, तब हमारे मन का दर्द, दर्द वो है, वो चल रहा है अभी, लेकिन मुझे उससे बेटर चीज मिल गई। जैसे मान लीजिए एक बच्चे के हाथ में ब्लेड है या चाकू है, और बच्चे को इस बात की नॉलेज नहीं है कि ब्लेड से मेरा हाथ कट जाएगा, चाकू से मेरा हाथ कट जाएगा, माँ आई और जोर से चिल्लाई तो और टाइट पकड़ लेगा। तो माँ जानती है कि उससे उस चीज को कैसे छुड़वाऊं, माँ ही जानती है। तो उसके सामने स्वीट रखेगी, डॉल रखेगी, है ना, कुछ रख देगी, ऐसा फ्रूट रख देगी, तो उस बच्चे का आकर्षण वो ब्लेड से या चाकू से हट करके उस चीज में चला जाता है। परमात्मा शिव बाबा भी हमारी माँ है, वो जानते हैं कि बच्चे ना दर्द को छोड़ नहीं पा रहे हैं, किसी को संबंध का, किसी को तन का, कुछ न कुछ दर्द है। तो वो माँ क्या करती है, शिव माँ हमारे सामने अब बेटर चीज रख रही है, मुरली के माध्यम से, इस प्यारे से ईश्वरी परिवार के माध्यम से। ज्ञान सरोवर कैंपस कितना सुंदर है, मैं तो कह रही थी 2 महीने में यहाँ रह ली, मैं ट्रेन में भी कैसे बैठूं। मतलब आप सोचो कि इतने दिन यहाँ रहने के बाद, सेंटर भी हमारा बाबा का घर है, लेकिन ये शिव बाबा का घर मधुबन, जिसको हम कहते हैं मधुबन है। तो मैं गिन रही हूँ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अरे 4-5 दिन बाद जाना है, मैं ट्रेन में कैसे बैठूंगी अब उस कलयुगी दुनिया में, फिर से वही वातावरण, ट्रेन में ये सीट हमारी, वो सीट हमारी, वो उसमें भी अब कूल रहना है, तो एसी में कोई इतने दिन रह लिया लगातार, अब फिर से उसको गर्मी में जाना है। तो उस गर्मी में जाने के पहले अपने आप को क्या करना है, संभालना है ना। हम तो हैं ही इसी जीवन में, अब सोचिए मीडिया वाले, हम लोगों को तो थोड़ा सा इस बार लग रहा था कि अभी तो सब, अभी बाहर जो माहौल है तो उसके कारण अभी संख्या, लेकिन हमने देखा संख्या और अच्छी आ रही है। तो ये शिव बाबा का ड्रामा का प्रताप है कि आज सबको खुशी, आनंद, प्रेम की जो आवश्यकता है, तो वो एक बार जब वो टेस्ट बैठ गया, एक बार बैठ गया ना, तो उस टेस्ट की ओर आप आकर्षित होकर के आएंगे। तो कई बार तो मैं लगभग 20 साल से इस मीडिया के प्रोग्राम में आती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि कई चेहरे मैं बार बार देखती हूँ, है ना, वो बहन बैठी है, कई चेहरे में बार बार देखती हूँ, तो मैं सोचती हूँ देखो ये हर बार आते हैं, और हर बार फिर नए नए लोगों को लेकर के आते हैं, कुछ सीखने को मिलता है। तो इसीलिए इन गुणों की अनुभूतियों को अगर आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप जो सोर्स है, अग्नि का सोर्स कौन है, सूर्य है ना, जल का सोर्स कौन है? सागर है ना। उसी प्रकार इन सात गुणों के जो सोर्स है वो है परमपिता परमात्मा, जो एक है। इसलिए हम प्यार से कहते हैं इस बात को कि एक ज्योति है सब दीपों में, सारे जग में नूर एक है। सच तो ये है इस दुनिया का हाकिम और हुजूर एक है। हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। गहराई तक जाकर देखो, हर धर्मों का सार एक है। एक वाहेगुरु, एक परमेश्वर, गॉड और अल्लाह एक है। नाम भले ही अलग अलग हो, भक्तों के भगवान एक है। नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। मन से मन की तार जोड़ लो, सीधी सच्ची बात एक है। तो बिना प्रेम के आपने सोचा कि उस प्यार के सागर परमात्मा के साथ जुड़ जाएंगे? संभव नहीं है। इधर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बैठ गए मेडिटेशन में। इधर रख रहे हैं ईर्ष्या द्वेष घृणा, बैठ गए मेडिटेशन में। नहीं होता। प्रैक्टिकल जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग मुरली के माध्यम से उस प्रेम को डेवलप करें। जो सूख रहा था, पूरा तो नहीं सूखा है, थोड़ा सूख रहा था, उसको फिर से एक प्यार का झरना बना दीजिए और उसके बाद मेडिटेशन में बैठ जाइए। मेडिटेशन में कई बार बैठने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ऐसी स्थिति आ जाती कि कर्म क्षेत्र में भी उस परम शक्ति के साथ लिंक जुड़ा होता है। लेकिन फिर भी आपको पढ़ाई करना है, आपको कितनी भी इंजीनियरिंग की नॉलेज हो, लेकिन आपको फिर भी विद्यालय में एडमिशन लेनी पड़ती है। तो ये एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ईश्वरीय परिवार है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि मॉर्निंग में ही हमारी क्लास होती है, और जिनको टाइम नहीं मिलता, आप मीडिया कर्मी जो हैं, उनके लिए विशेष हमारी दीदियाँ बात का भी टाइम देती हैं और आपसे मिलती हैं, मेडिटेशन करती हैं। तो आप भी अपने जीवन में प्रैक्टिकल इसको स्थान दीजिए। तो मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि परमात्मा आप लोगों के जीवन को भी खुशियों से भरपूर कर देंगे। तो अंत में यही कहूँगी कि फूल की हर कली खुशबू दे आपको, सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको। ये विद्यालय तो केवल राह दिखाने वाला है, देने वाला हर खुशी दे आपको, हर खुशी दे आपको, हर खुशी दे आपको। और एक रिक्वेस्ट कि कल से जो मॉर्निंग सत्र चलेंगे मिस नहीं करिएगा। आपको सबको बुकलेट मिल गई होगी, तो ले लीजिएगा, और उस बुकलेट में जो आपका टाइम टेबल है, दिनचर्या है, उसको आप बिल्कुल फॉलो कीजिएगा। ओम शांति। आज जो भी बातें हमने सुनी उसे प्रैक्टिकल हमें अपने जीवन में स्थान देना है। विशेष आज से ही ये संकल्प कर ले कि पॉजिटिव थॉट यानी मुरली और मेडिटेशन यानी ध्यान या योग या कनेक्शन उस सर्वोच्च शक्ति ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ, मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक के मध्य ज्योति स्वरूप महसूस करें। मैं आत्मा हूँ, और मेरे पिता परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, शांति के सागर है, उनसे शांति की लहरें मुझ आत्मा पर पढ़ रहे हैं। आज के चिंतन की धारा में हमने यही समझा कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, उसका सामना मुझे उस परम शक्ति के साथ जुड़कर करना है, क्योंकि हजार भुजाओं वाला परमात्मा मेरे साथ है। मेरे साथ एक छोटा सा भाव, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। सुख दुख इस जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही हम सबको ओ इंसान बनाते हैं। संसार की नदियाँ के दोनों ही किनारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। परमात्मा मेरे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत मुझसे मेरी शक्ति को छीन नहीं सकती। विश्व का नियंता मेरे साथ है। शांति शांति शांति, ओम शांति ओम शांति ओम शांति।